बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 7 जुलाई दिन शनिवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। कहीं बच्चा चुराने की अफवाह के कारण तो कहीं गौमांस रखने के शक में पिछले एक साल के दौरान 9 राज्यों में भीड़ ने पीट पीट कर 27 लोगों की हत्या कर दी। क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है? भीड़ को यह हिम्मत कहां से मिलती है कि वो किसी की जान ले ले? बीबीसी इंडिया बोल में आज चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। भारत प्रशासित कश्मीर में आज सेना और विद्रोहियों के बीच हुई झड़प में 3 लोगों के मारे जाने की सूचना है। अधिकारियों के अनुसार कुलगाम जिले में कुछ प्रदर्शनकारियों ने सेना की टुकड़ियों पर पत्थर फेंके, जिसके जवाब में सेना की तरफ से की गई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए। दूसरी तरफ अलगाववादियों का कहना है कि सेना ने प्रदर्शनकारियों पर बिना सोचे समझे कार्रवाई की। केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को मॉब लिंचिंग के अभियुक्तों का सम्मान करने पर चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा है। पिछले साल एक मीट कारोबारी मोहम्मद अलीमुद्दीन की भीड़ द्वारा की गई हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुए कुछ लोग जयंत सिन्हा के घर पहुंचे थे, जहां केंद्रीय मंत्री ने उनका सम्मान किया था। चौतरफा आलोचना के बाद जयंत सिन्हा ने कहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिलेगी और जो निर्दोष हैं वे मुक्त हो जाएंगे। जापान में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अभी तक कम से कम 38 लोगों के मारे जाने जबकि 50 के करीब लोगों के लापता होने की सूचना है। देश के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में रहने वाले 15 लाख से अधिक लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों में चले जाने के लिए कहा गया है। बाढ़ के कारण सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, दमकलकर्मी और सेना के जवान लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। जापान के मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में और बारिश हो सकती है। थाईलैंड में एक गुफा में फंसे 12 बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लगभग 2 हफ्तों से गुफा में बंद बच्चों ने अपने परिजनों को पत्र लिखकर अपनी कुशलता का समाचार दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके हौसले बुलंद हैं और ख्याल उनका अच्छे से रखा जा रहा है। बच्चों ने अपने पत्रों में खाने की अपनी मनपसंद चीज़ों का भी जिक्र किया है। बचाव दल में शामिल कमांडर नारोंगसक ओसोंद कॉर्क ने पत्रकारों को बताया, कल बचाव अभियान नाकाम रहा, इस वजह से हमारी पूरी टीम बेहद दुखी है। बचाव अभियान के दौरान हमारे एक साथी की जान चली गई। मेरी संवेदनाएं उस साथी की पत्नी और बच्चे के साथ हैं। हमें इस तरह की असफलताओं से बचना होगा। हालांकि मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इस तरह का हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। हम इस तरह की असफलताओं से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये थे बचाव अभियान में शामिल थाईलैंड के कमांडर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्योंगयांग में अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने यह बात कही। हालांकि इसके जवाब में उत्तर कोरिया की समाचार एजेंसी की तरफ से कहा गया है कि उत्तर कोरियाई सरकार को अमरीका के साथ हुई बातचीत पर अब अफसोस है। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरियाई सरकार ने कहा है कि अमरीका परमाणु निरस्त्रीकरण से जुड़ी एक पक्षीय मांगें सामने रख रहा है। पिछले महीने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात के बाद माइक पोम्पियो इस दौरे पर थे। अमरीका के लिए वापस रवाना होने से पहले माइक पोम्पियो ने पत्रकारों से कहा, हमारे बीच कई घंटों तक काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। जो ये सभी जटिल मुद्दे हैं, लेकिन हम लगभग सभी मुद्दों पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी और होना बाकी हैं। अब हमारे बीच अगली मुलाकात 12 जुलाई को होगी। इस तरह सिंगापुर सम्मेलन में जिन बातों पर सहमति बनी थी, हम उन पर आगे बढ़ रहे हैं। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। फुटबॉल विश्व कप में आज सेमीफाइनल के लिए अंतिम 2 टीमों का फैसला हो जाएगा। अभी स्वीडन की टीम इंग्लैंड का सामना कर रही है, तो वहीं मेजबान रूस क्रोएशिया से भिड़ेगा। कल खेले गए मैचों में फ्रांस और बेल्जियम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए बम धमाके में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। इस्लामिक समूह अल शहबाब ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। समूह के अनुसार उन्होंने गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय पर हमले किए, इसके बाद चरमपंथी इमारत के भीतर घुस गए। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, टोल फ्री नंबर नोट कीजिए 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर सतीश देशपांडे, स्वागत आपका। और स्वागत दुनिया भर में सुन रहे हमारे तमाम श्रोताओं का। इंडिया बोल में आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र करने से पहले कुछ आवाज़ें सुनना बेहद जरूरी है।
हम वीडियो में वायरल कर देवे, वीडियो
टीवी पर ऐसा काम ना करो।
ये आवाज़ें सुनने में आपके कानों को भले ही अच्छी ना लगें, लेकिन बीते एक साल में भारत के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें भीड़ ने शक की बुनियाद पर घेरा, फिर कपड़े फाड़े, बलात्कार करना चाहा, जिंदा जलाने की कोशिश की और सबसे आसान लगा पीट पीट कर मार डालना। कम से कम 27 लोग बीते एक साल में भीड़ के हाथों मारे गए। किसी पर बच्चा चुराने का संदेह था तो किसी पर गौमांस रखने का शक। मारे गए लोगों के नाम कालूराम, शेख सिराज, रुक्मिणी, बालकृष्णा, नीलोत्पल दास, अभिजीत नाथ, जहीर, सुकांत या अलीमुद्दीन, इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जहां ये दोनों वजहें नहीं थी, लेकिन तमाम मामलों में एक समानता थी और वो ये कि भीड़ ने पुलिस कानून किसी की परवाह नहीं की और वही किया जो वो करना चाहती थी। तो सवाल ये कि भीड़ को ये हिम्मत कहाँ से मिलती है कि वो पीट पीट कर किसी की हत्या कर दे, चर्चा में श्रोताओं को शामिल करेंगे। उससे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सतीश देशपांडे, आपसे जानना चाहेंगे ये जो भीड़ है जो हत्या भी कर देती है, यही भीड़ हमारे समाज का कौन सा रूप है?
जी, इस तरह की घटनाओं के पीछे तीन चीज़ों का एक साथ होना जरूरी है। एक चीज़ तो ये कि एक कुंठित और आक्रोश से भरा जनसमुदाय, दूसरी चीज़ है इसी समाज के कुछ तबके या कुछ कोटि के लोग जिन्हें हीन माना जाता है, जिन्हें निचला दर्जा दिया जाता है और जिन्हें उत्पीड़न के लायक समझा जाता है, और तीसरा राजतंत्र या सत्ता की ओर से इशारा कि अमुक अमुक विषय पर अमुक अमुक समुदाय के साथ कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। जब ये तीन चीज़ें साथ आती हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं।
बहुत सारगर्भित तरीके से आपने तीन बातें गिनाई हैं, चर्चा को हम जारी रखेंगे। स्टूडियो में बैठे हैं उस तरफ शीशे की दीवार के उस तरफ, कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे हैं देवाशीष कुमार, इशारा कर रहे हैं कि कार्यक्रम में टेलीफोन आने शुरू हो गए हैं, श्रोताओं को शामिल कीजिए। तो इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
हेलो, मैं आसनसोल वेस्ट बंगाल से राम जी दुबे बोल रहा हूँ।
राम जी दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सोचते हैं आप इस विषय पर?
हम जो सोच रहे हैं वो आपको सामने रख रहे हैं, मगर एक अनुरोध ये है कि मैं जो भी बोलूं बीच में अगर ये हुआ कदल हुआ तो फिर मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी। असल मेरी बात फिर एक डेढ़ मिनट यह सुन लीजिए।
आप अपनी बात रखें
जी। हाल ही में कई प्रदेशों में भीड़ ने कई लोगों की जान ले ली, कई लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया। देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का जो अधिकार देता है, पर सजा देने का अधिकार उनको नहीं है। अगर कोई दोषी है तो भी सजा देने का अधिकार केवल न्यायालय को है। इस तरह की घटनाएं हमारे मानव होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने की जरूरत है। भीड़ इकट्ठा करके किसी को भी मार डालने की नई परंपरा जो बीते कुछ वर्षों से बढ़ी है नासूर होती जा रही है। देश में इतनी लचर कानून व्यवस्था कि अपराधियों को तो छोड़ दीजिए, आम आदमियों के दिल से भी कानून का डर समाप्त हो गया है। संविधान संचालित इस देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली नई परंपरा तेजी से कायम हो रही है। और
जी 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 अपनी बात समाप्त करें राम जी। दुबे जी बहुत अच्छा लगा जी, और श्रोताओं को भी वक्त देना है।
बस थोड़ा एक दो लाइन और है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में सभ्य और सुसंस्कृत भारत इतिहास बन जाए और यहाँ लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र हावी हो जाए। जो अपराधी नहीं है उन्हें भी भीड़ पीट पीट कर मार दिया, यह बात सोच कर लोकतंत्र में आस्था रखने वाले के विश्वास करने वाले लोगों की आत्मा कांप रही है।
राम जी दुबे हमारे बहुत पुराने श्रोता, लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र हावी ना हो जाए अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। और अगले कॉलर को कार्यक्रम में शामिल करेंगे अब। जी
जी नरकटियागंज बेतिया जिला से मैं बोल रहा हूँ, अभिनव कुमार।
अभिनव जी कैसे हैं आप?
जी सब तो ठीक है।
कैसे सुनते हैं हमारा कार्यक्रम, रेडियो से या फेसबुक के जरिए?
जी फेसबुक के जरिए।
चलिए बहुत अच्छा लगा, रखिए अपनी बात, क्या सोचते हैं इस विषय पर आप?
देखिए मैं तो कुल मिला के यहीं पे यही बात कहूंगा कि कहीं ना कहीं कानून को ताक पे रख करके इस तरह की घटनाएं को हावी किया जाता है। कुछ चंद लोग, सारे मुद्दे के पीछे यही है कि वोट बैंक की राजनीति की जाती है और इसको क्या बोलते हैं, कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही रखा जाता है और वोट बैंक के लालच में यह सब किया जाता है।
तो अभिनव जी हमारे श्रोता नरकटियागंज बिहार से इस पूरे मामले में जरा नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं, चर्चा जारी रखेंगे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं इस समय।
जी जी जी, मैं जमील अहमद बोल रहा हूँ, राजगढ़ ताजपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर वेस्ट यूपी से।
जमाल साहब कैसे हैं आप?
जी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं आपका बीबीसी का बहुत पुराना इसमें सुनता हूँ बीबीसी को और मैं इंटरनेट पर सुनता हूँ इस वक्त।
अरे बहुत
इस संबंध में मेरा कहना सर ये है कि आप अगर देखें तो जितनी जगह भी ये में मॉब लिंचिंग हो रही है ये ज्यादातर स्टेट बीजेपी शासित प्रदेश हैं और इनमें नेताओं का ही कहीं ना कहीं सहयोग है, शासन प्रशासन इनको संरक्षण देता है। अभी आपने अपनी खबरों में बताया कि जयंत सिन्हा जी ने जो गौ रक्षक थे उनको सम्मानित किया है, इस तरह की घटनाएं ही इन्हें मॉब लिंचिंग के लिए प्रेरित करती हैं। और जब तक इसमें शासन प्रशासन में कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होगी इनको सजाएं नहीं होंगी। परसों आपने बताया था कि झारखंड में ही जो मॉब लिंचिंग में थे चार मुलजिम उसमें बरी हो गए हैं, तो ये एक वजह है कि इसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इनको संरक्षण दे रहा है और बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग खास करते हैं जिन्हें सत्ता का संरक्षण है उसी इन काम को।
जमील अहमद साहब ये आपका आरोप है, ऐसा आपको लगता है लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है? आपने अपनी बात रखी बहुत अच्छा लगा, ये हम चर्चा को आगे रखेंगे। और इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सतीश देश पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं समाजशास्त्र के जाने माने। अजनबी बाहरी महिलाएं और अल्पसंख्यक, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, अजनबी बाहरी महिलाएं और अल्पसंख्यक मोटे तौर पर ये वो चार वर्ग हैं जिन्हें भीड़ ने अपना निशाना बनाया ज़्यादातर मामलों में ये देखने में आया, ये क्या समीकरण है?
कुल मिलाकर ऐसे लोगों पर आक्रमण किया जाता है जो सामाजिक रूप से असहाय हों या जिनके बारे में सामाजिक प्रचलन हो कि इनके साथ आजकल कुछ भी किया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि ऐसी भीड़ किसी अमीर पर या किसी संपन्न व्यक्ति पर नहीं टूट पड़ती, वो ऐसे लोगों पर टूट पड़ती है जो अपना ही हिस्सा हैं, उनके जैसे ही लोग हैं, वो भी किसी तरह से लाचार हैं। तो मेरी समझ में ये एक अजीब सी बहुत भयंकर कुंठा से ये पनपती है और वो कुंठा हमारे समाज में आजकल जो हो रहा है, एक तरफ तो मीडिया हमें लगातार बताया जाता है कि क्या कब कुछ दुनिया में किया जा सकता है और उपभोग की कितनी सारी वस्तुएँ हैं जिनका मजा लिया जा सकता है, और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था है जो बहुजन को, हम हमारे समाज के बहुत बड़े भाग को इस तरह का उपभोग करने का मौका ही नहीं देती। और इन दोनों के बीच से, इन दोनों दिशाओं में खींचे लोग, एक तरफ उपभोग की तरफ उकसाता हुआ मीडिया, दूसरी तरफ उपभोग न कर पाने लायक, क्योंकि बेरोजगार हैं या फिर नौकरी है भी तो बहुत छोटी मोटी नौकरी है, तो वो अपने आप को पूरी तरह से मनुष्य नहीं समझ पाते, मनुष्य नहीं मान पाते, और इसलिए उन्हें लगता है कि अपनी शख्सियत को कहीं ना कहीं दिखाना है, कहीं ना कहीं दिखाना है कि हम भी कुछ हैं। तो इसलिए उन्हें ऐसा जब मौका आता है कि कुछ ऐसे कोई मुद्दा ऐसा उठा जिसके बारे में अब समाज में प्रचलन है कि इस पर कुछ भी किया जा सकता है, तो फिर वो टूट पड़ते हैं और अपनी समाज की जो जिस तरह से नियंत्रण रखता है अपने आप पर, उस तरह के नियंत्रण, आत्मनियंत्रण से वो आगे निकल जाते हैं।
तो प्रोफेसर सतीश देशपांडे जी, आप कुंठित आक्रोश जो है वो कथित तौर पर हीन भावना, और ये दो तीन वजह मोटे तौर पे अभी तक आपने गिनाई हैं। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को हम बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में श्रोताओं को फिर शामिल कर रहे हैं। इस समय कौन श्रोता हमसे जुड़ गए हैं?
हम उलानपुर से मुन्ना कुरैशी बोल रहे हैं।
बुरहानपुर,
उलानपुर छपरा में है।
अच्छा, बिहार में है ये?
हाँ, बिहार में। बिहार,
अच्छा अच्छा, रखें अपनी बात, कहिए।
देखिए, बात है कि इसमें भीड़ में लोग इकट्ठा करके मार देते हैं, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन एकदम ढिलाई है। हाँ, इसको अगर प्रशासन ठीक से अगर काम करे तो बहुत कुछ अच्छा होगा।
ये छपरा वाले श्रोता कह रहे हैं कि प्रशासन की ढिलाई है। चर्चा में हम इस पहलू को भी शामिल करेंगे और श्रोताओं को, और श्रोताओं से बात करेंगे इस समय हम पहले।
हेलो
जी, जी कौन बोल रहे हैं?
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूँ, पुंछ से। सर
शफी साहब
जी, जी
क्या सोचते हैं इस विषय पर?
सर बात यह है कि ये सब पॉलिटिशियन जो हमारे लीडर लोग हैं, ये कानून जो है वो पार्लियामेंट में सही नहीं बनाते, और ये अगर कानून सही हो, मिसाल के तौर बलात्कार वाले को फांसी दी जाए और जो कत्ल के बदले कत्ल हो, तो किसी की हिम्मत कैसे बने? जब ऐसा कानून ही बन जाए तो क्या हो जाएगा? अदालतों में मसला लटक जाता है, कोई कानून है नहीं है जिसकी वजह से किसी को पूछा ही नहीं जा सकता। इसलिए ये जो मर्डर हैं, ये जो बलात्कार हो रहा है, ये सब कुछ सियासी लोगों की वजह से सब कुछ हो रहा, सिर्फ सियासी लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। सियासी लोगों ने ये जो है ये दंगल सियासी वजह है, वोट की खातिर बना रहे हैं।
शफी साहब आपकी बात कार्यक्रम में शामिल हुई, राजनीति की बात कर रहे हैं घूम फिर कर आप, और इस बात का हवाला दे रहे हैं कि लचर कानूनी व्यवस्था, अदालती कार्रवाई लंबी, इसका जिक्र कर रहे थे। और कौन श्रोता इस समय हमसे जुड़ गए हैं?
हाँ हेलो, मैं महाराष्ट्र से जालना जिले से बात कर रहा हूँ, सुदामा तांबड़े, बीबीसी का। मैं 1980 से श्रोता हूँ आपका।
अरे वाह, क्या बात है, आप हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं।
और बहुत पुराने श्रोता बोले तो मेरे दादाजी सुनते थे पहले बीबीसी, तो मैं उनके पास से। तो लेकिन एक प्रश्न है मेरा आपसे।
जी
हाँ, बात ऐसी है हमारी कि हमारे भारत का कानून कम से कम कुछ तो भी कमजोर हुआ है, और ये ऐसी घटनाएं जो होती है हमारे यहाँ पे, धुले का जो है हमारे पास में 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये।
जी
हेलो
जी, हाँ तो सुन रहे हैं।
ये ऐसी जो घटना होती है तो कानून का कुछ तो कुछ कमजोर होना बहुत बात है।
बहुत शुक्रिया सुदामा जी, जालना महाराष्ट्र से ये श्रोता थे प्रोफेसर सतीश देशपांडे। एक बार फिर हम आपके पास लौटेंगे। ये जो महाराष्ट्र के धुले में बच्चा चोरी के संदेह में भीड़ ने 5 लोगों की हत्या की, जिस कमरे में हत्या की वो पंचायत का कमरा था, कमरे की दीवार पर महात्मा गांधी और तमाम नेताओं की तस्वीरें लगी थी, उस कमरे की दीवारों पर खून था, फर्श खून से सना हुआ था, हत्या बहुत बर्बर तरीके से की गई थी। ये बर्बरता समाज के उस हिस्से में कैसे पहुंची जो गांव देहात में रहता है, खेती किसानी करता है और शहरी जीवन के मुकाबले बहुत हद तक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, तो वहां तक इस स्तर की बर्बरता समाज में कैसे दाखिल हो गई?
जी, आपने बहुत सटीक सवाल पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि अब हमारे समाज में जो पहले कहा जाता था, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं रिमोट विलेज या दूर दराज के गांव, ऐसी चीज़ कोई नहीं रह गई है, क्योंकि मीडिया के कारण अब सब लोग सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो तो इसकी वजह से ये कहना कि ये बीहड़ देहात बहुत दूर देहात का मामला है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, आज कहते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए छवि, तो छवि हर जगह पहुँच जाती है। तो इसलिए समाज में जो कुछ हो रहा है उसका असर अब हमारा समाज चूंकि मीडियामय हो गया है तो इसकी वजह से हर जगह पहुँच जाता है। और यहाँ बार बार बहुत सारे श्रोताओं ने यह कहा है कि प्रशासन में ढील है, कानून को और कड़ा किया जाना चाहिए, सज़ा को और सख्त किया जाना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन ये बात की मर्म तक नहीं पहुंचती हैं। और इसका सज़ा को बढ़ा देना या फिर किसी कारक को जैसे व्हाट्सएप जैसी चीज़ पे कोई प्रतिबंध लगा देना, इस तरह की चीज़ों से ये घटनाएं अपने आप कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि देखिए, जो कानूनी व्यवस्था जो हम कहते हैं वो सिर्फ एक तरह से प्रतीकात्मक है, हर एक व्यक्ति पे कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर हमारा समाज चल रहा है या कानूनी व्यवस्था चल रही है तो हमारे मन के अंदर जो पुलिस है उसके कारण ये कानूनी व्यवस्था चल रही है, यानी कि हमारा अपना विवेक, और ये विवेक भी समाज ही हमें सिखाता है। तो सामाजिक प्रचलन के मुताबिक ये तय होता है कि क्या हम समाज में क्या कर सकते हैं, क्या जायज है क्या नाजायज है। तो एक तरफ जब समाज हम में एक बहुत भयंकर कुंठा भर देता है और दूसरी तरफ ऐसे तबके समाज के प्रस्तुत करता है कि इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है, और तीसरी तरफ जब राजतंत्र की ओर से ये इशारा होता है या फिर लोग समझते हैं कि ऐसा इशारा है कि अमुक मुद्दे पे या अमुक तबके के साथ कुछ भी किया जा सकता है, तब ये जो अपनी अपने अंदर का जो नियंत्रण होता है, स्वनियंत्रण, अपने आत्मनियंत्रण, उससे आगे बढ़कर लोग अपनी सारी जो अचेतन अवचेतन भड़ास जो भी है वो किसी असहाय व्यक्ति पर निकालते हैं।
मैं कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करेंगे, उससे पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ प्रोफेसर साहब, वो ये कि तमिलनाडु और त्रिपुरा में अफवाह उड़ी कि बच्चे चोरी करने वाले लोग घूम रहे हैं और इन अफवाहों को पंख लगा दिए सोशल मीडिया ने, नतीजा ये हुआ कि भीड़ ने कुछ लोगों की हत्या कर दी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्परिणाम अब खुलकर नजर आने लगे हैं? इस सवाल पर हम लौटेंगे आपके पास, कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करेंगे।
नमस्कार सर।
जी नमस्ते
सर, मैं हिमांशु दिनवाल, तोक बोलना, ग्राम पंचायत दिनवाल गांव, पोस्ट ऑफिस चौड़ा मेहता, जिला चंबा, उत्तराखंड से बात कर रहा हूं सर।
उत्तराखंड से बात कर रहे हैं हिमांशु जी, कैसा लग रहा है आपको आज?
सर मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार आजकल देश में ये भीड़ में होने वाली हिंसाएं में बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? मैं पकड़े जाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला सकता सर? एक्सपर्ट महोदय से मैं पूछना चाहूंगा।
हिमांशु आप लाइन पे बने हुए हैं?
यस सर।
आप लाइन पे बने हुए हैं?
जी सर।
आप हिमांशु अपने उत्तराखंड से कुछ उदाहरण दे सकते हैं हमें, जब इस तरह के मामले सामने आए हों, जब सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया हो, या ऐसी कोई नज़ीर आप बता सकते हैं जब कुछ मामला देखा हो आपने आपके अपने राज्य उत्तराखंड में?
उत्तराखंड में तो ऐसी घटनाएं ज़्यादातर नहीं होती हैं, जहाँ तक है मेरी याद में, मैं 17 साल का एक युवा श्रोता हूँ बीबीसी हिंदी का, तो राजस्थान बिहार उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो उन पर आरोपियों पर कड़ी सजा नहीं दी जाती है, इससे कि अगर आरोपियों को कड़ी सजा दी जाए तो अगली बार से भीड़ में ऐसे हिंसा करने की आरोपी साहसी नहीं जुटा पाएंगे, तो इसके लिए बड़ी सजा देने की आवश्यकता है।
मैं हिमांशु और अपने तमाम श्रोताओं को वो घटना याद दिलाना चाहूँगा, उत्तराखंड में नैनीताल में एक कुछ लोगों ने एक युगल को, प्रेमी जोड़ा जिसे कहा जा रहा था, उसके साथ मारपीट करने की, दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। खबर कुछ पुरानी हो चुकी है, 2-1 महीने पुरानी खबर हो चुकी है, लेकिन पुलिस की तत्परता से, पुलिस के एक अधिकारी की तत्परता से वहाँ पर मारपीट की नौबत नहीं आई और ऐसी घटना सामने नहीं आई जो जिसकी चर्चा शायद आज हम कार्यक्रम में दूसरे पहलू के रूप में कर रहे होते। तो मैं आपके पास दोबारा लौट रहा हूँ प्रोफेसर सतीश देशपांडे, सवाल वही था कि क्या भारतीय समाज में सोशल मीडिया के दुष्परिणाम, जिस तरह से ये अफवाहों का पंख निकल फैलाते हैं सोशल मीडिया के जरिए, अब ये दुष्परिणाम नज़र आने लगे हैं, इन्हें इस तरह से कह सकते हैं?
जी जी बिल्कुल नज़र आने लगे हैं। और सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी खूबी जो सोशल मीडिया है की है, वो ये है कि बिना बहुत कुछ खर्च किए वह खबर को बहुत दूर दूर तक पहुंचा सकती है, बहुत जल्दी, क्षणों में, बिल्कुल मिनटों में पहुंचा सकती है। वहीं उसकी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि बाकी मीडिया में जिस प्रकार के कमोबेश, इनमें भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन कमोबेश सभी मीडिया में जवाबदेही का कोई तंत्र बना हुआ है, जवाबदेही की कोई व्यवस्था है कि कोई अगर झूठी खबर छापे तो उसके बाद उसका कुछ बिगड़ सकता है। सोशल मीडिया में का दुर्भाग्य यह है कि वहाँ जवाबदेही का कोई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसकी वजह से सोशल मीडिया इस तरह की घटनाओं में बहुत अहम भूमिका निभाती दिख रही है।
एक और कॉलर को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। देवाशीष हमारे कार्यक्रम के तकनीकी सहायक इशारा कर रहे हैं, कार्यक्रम में श्रोता शामिल हो रहे हैं। कौन बोल रहे हैं इस समय? बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। कौन बोल रहे हैं?
मोहम्मद शमीम।
जी मोहम्मद शमीम साहब, कैसे हैं आप?
जी है, बीबीसी के बहुत पुराने श्रोता है, बात नहीं होती, फोन लगाते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं
जी,
गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान दे के बजाय इसके कि लोगों को जागरूक करे कि ऐसे मतलब हरकत लोग ना करें, भीड़ कि लोगों को मतलब मारे या पीटे, अगर पकड़ा जाता है तो उनको पुलिस के हवाले करें, ये चीजें जो है मतलब जागरूक करके लोगों को बताया जाए और किया जाए ताकि भीड़ जो है कि ऐसी हरकत ना करे।
मोहम्मद शमीम थे, ये सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं प्रोफेसर साहब, और ये सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए समाज को लेकर इस तरह के मामलों में, क्या लगता है क्या नहीं किया सरकार ने?
मेरे ख्याल से सरकार ने मोटे तौर पर यह नहीं किया कि इन मामलों की संगीनता, इन मामलों को वो बहुत संजीदगी से ले रही है, ऐसा उन्होंने इशारा नहीं किया, और इसकी वजह से, या जल्दी से नहीं किया, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, तो इसकी वजह से ऐसे तत्वों को, समाज में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं, तो उन्हें लगने लगा कि जैसे किसी दुकान में कोई सेल लगती है कि भारी छूट है अमुक अमुक कपड़ों पे या किसी पे, तो कुछ मुद्दों पे या कुछ तबकों पे, कुछ समुदायों पर छूट लगी हुई है कि कर लो जो कुछ करना है, तो ऐसा अगर प्रतीत होता हो तो फिर ऐसी घटनाओं में बढ़त आ सकती है। लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है, समाज में कुछ बदल रहा है, सरकारें हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर पाएंगी, और नहीं वो इस ऐसा कभी पहले कर पाई हैं, नहीं भविष्य में कर पाएंगी, लेकिन वो जो चीज़ समाज में है उसे उकसा कर और तूल दे सकती हैं या फिर उसे दबाने की कोशिश कर सकती हैं, सरकारें इतना ही कर सकती हैं। तो मेरी वजह से इसका मूल तत्व हमारे समाज में ही है, भले ही सरकारों ने इसे तूल दी हो।
एक हमारे श्रोता पाठक हैं बीबीसी हिंदी के, संजीव मिश्रा लिखते हैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। ये जो सत्ता का फैक्टर है भीड़ को बनाने में और उसको दिशा देने में अहम भूमिका अदा करता है। मोहम्मद अकरम लिखते हैं कि जब बड़े नेता हत्या के आरोपियों का स्वागत फूल माला पहना कर करें तो फिर हत्यारों के मन में खौफ कैसे रहेगा। शादाब आलम लिखते हैं ये सब कुछ सरकार की शह पर होता होगा। धर्मराज यादव लिखते हैं कि कट्टरता देखकर भारत में कट्टरता बढ़ रही है, क्रिया की प्रतिक्रिया पर इशारा कर रहे हैं ये। तो मुझे लगता है कि अब घड़ी की सुइयां इजाज़त नहीं दे रही हैं कि हम और श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करें। बीबीसी इंडिया बोल में अब हम यहीं पर बात अपनी पूरी तो नहीं होगी बात, लेकिन चर्चा जारी रहनी चाहिए, कार्यक्रम को हम विराम देंगे। प्रोफेसर सतीश देशपांडे शुक्रिया, आपका चर्चा को सार्थक बनाया आपने,
शुक्रिया।
और शुक्रिया पूरी दुनिया में हमें इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे तमाम श्रोताओं का। थोड़ी सी नाराज़गी है मुझे उन श्रोताओं से जो हमें सुनते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि फ़ोन करें कि ना करें, अगली बार सिर्फ सुनिएगा नहीं बल्कि अपनी बात भी रखिएगा। बाकी माफ़ी उन श्रोताओं से जिन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ठीक 7 दिन के बाद फिर आएगा शनिवार, फिर होगा इंडिया बोल एक नए विषय के साथ। आज संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।